Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 10, Verse Number 4 and 5. Is आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञान्तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददातिं स्वप्रदान्तिकम्। वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकाकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चनं गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवि प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पत्रुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यनन्द श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदी गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। अध्याय 10 श्लोक संख्या 4 एंड 5। भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं,
बुद्धे ज्ञानम सम्मोहः क्षमा सत्यं धम क्षमा सुखं दुःखं भवोद्भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं धम क्षमा सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विदा। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमः सुखं दुःखं दुःखं भवो भावो भयं च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक् विदाः
शब्दात् बुद्धि यानी बुद्धि ज्ञान ज्ञान सम्मोह अर्थात संशय से रहित क्षमा मतलब क्षमा सत्यम यानी सत्यता दमह यानी इंद्र यानी ग्रह शमह यानी मन का निग्रह सुखम यानी सुख दुखम यानी दुख भव यानी जन अभाव यानी मृत्यु भय यानी डर च भी अभय यानी निर्भीकता एव च भी तथा अहिंसा यानी अहिंसा नॉन वायलेंस समता समभाव तुष्टि यानी संतुष्टि तप तपस्या दानम यानी दान यश यानी यश अयश यानी अपयश या अपकीर्ति भवन्ति यानी होते हैं भावा प्रकृतियां भूतानां जीवों की मत्त एव पृथक विदा मत्त यानी मुझसे एव यानी निश्चय ही पृथक विदा यानी विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित व्यवस्थित अनुवाद देखिए भगवान कहते हैं बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में जो कुछ भी किसी व्यक्ति के अंदर क्वालिटीज हैं, वो सब कारण उन क्वालिटीज का कारण मैं हूँ। यहाँ पर एक व्यक्ति के अंदर की 20 गुण 20 क्वालिटीज यहाँ पर कृष्ण ने हमें बताई हैं और भगवान कहते हैं भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विदान ये जितनी भी क्वालिटीज हैं वो वास्तव में निश्चय रूप से मत्त एव एव मतलब निश्चित रूप से ये मेरे द्वारा ही प्रदत्त हैं मेरे द्वारा ही उत्पन्न होती वास्तव में भक्तों जो वस्तु भगवान में है वही उसके अंश में संभव है जो गुण भगवान में नहीं वो उसके अंश में भी संभव नहीं जैसा कि हम जानते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं तो जो क्वालिटीज हमारे अंदर हैं वो सारी की सारी वास्तव में कृष्ण की क्वालिटीज हैं जैसे अगर हम क्रोध करते हैं तो वो क्रोध हमें क्यों आता है क्योंकि भगवान के अंदर वो है जैसे हम अगर लालच करते हैं तो लालच भी हमारे अंदर इसीलिए है क्योंकि कृष्ण के अंदर है अगर हम खुश रहते हैं तो खुशी कहाँ से हमारे अंदर आई खुश होने का गुण कहाँ से आया क्योंकि वो कृष्ण के अंदर है अगर हम दुखी हो रहे हैं तो वो दुख होने की क्वालिटी कहाँ से आई वो क्योंकि कृष्ण के अंदर से आई क्योंकि कृष्ण के अंदर है ना भगवान हमें बताएंगे जब हम दसवां श्लोक दसवां अध्याय पढ़ेंगे ना तो भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 10.36 में भगवान कहते हैं द्यूतम चलयतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम छलियों में मैं जुआ हूँ तेजस्वियों में तेज हूँ मैं विजय हूँ मैं साहस हूँ और बलवानों का बल भी मैं हूँ यानी भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी आपके पास है, जो क्वालिटी आपके पास है, वो मेरे कारण है। और यहाँ पर जिन 20 क्वालिटीज के बारे में भगवान ने बताया है, उसको शिला प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में बहुत ही विस्तार से बताया है। उसको हम एक एक को अच्छे से समझेंगे, भले इस श्लोक को समझने में 2-3 दिन लग जाए, लेकिन एक एक चीज को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। परंतु इससे पहले हम इस परपट का ये जो तात्पर्य है, इसका सिर्फ एंड वाले 2 पैराग्राफ लेंगे, क्योंकि फिर जब हम इसको डिटेल से पढ़ते जाएंगे तो जिस जिस गुण के विषय में श्री प्रभुपाद जी ने बताया है उसको सही तरह से डिटेल से समझे जाएंगे। और अभी क्या करेंगे, जो लास्ट के 2 पैराग्राफ है ना, वो आप निकालिए और मेरे साथ पढ़िए। इसमें श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सारे गुण, कौन से सारे गुण, जो भगवान ने अभी हमने जो पढ़े, बुद्धि ज्ञान असम्मोह, ये 20 तरह की क्वालिटीज, इनको श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, ये सारे गुण संसार भर में, मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। यानी ये मनुष्यों में भी हैं, देवताओं में भी प्रकट होते हैं, और न केवल इस पृथ्वी लोक पर, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, अन्य लोकों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। अब अन्य लोग, जैसे कोई कोई लोग सोचते हैं जो ये 84 करोड़ जो योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं, वो केवल इस पृथ्वी लोक पर है। परंतु पृथ्वी लोक पर खाली नहीं है, क्योंकि ये जो 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं और भी दूसरे जो पक्षी हैं, कुछ ऐसे हैं जीव जो हमारी इस पृथ्वी पर नहीं है, कुछ दूसरे लोकों में है, उसी तरह जो 4 लाख प्रकार के जो मनुष्य हैं वो भी केवल पृथ्वी पर नहीं है। जैसे गंधर्व, किन्नर पता है किसको बोलते हैं? नर का मतलब होता है मनुष्य, और की मतलब क्या ये मनुष्य है। जैसे ये पता है कौन है, जब हनुमान जी, हाँ, ये जो हनुमान, सुग्रीव इत्यादि थे, वो त्रेता युग में आए थे श्री राम के साथ लीला करने के लिए, वास्तव में किन्नर योनि है, ये वानर नहीं है। वास्तव में किन्नर का मतलब क्या है कि उनके शरीर तो मतलब ऐसा मनुष्य जैसा होता है, परंतु उनके शरीर में दोम होती है और थोड़े बाल उनके शरीर के ज्यादा होते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये नर है कि नर नहीं है, मतलब नर कि नर नहीं, तो ऐसे जैसे लगता है ना, क्या ये मनुष्य है या वानर है, तो इसलिए इसका नाम किन्नर है। तो और दूसरे भी बहुत सारे हैं, अलग अलग प्लैनेट्स में, अलग अलग लोकों में दूसरे ऐसे जीव हैं, तो उनके अंदर भी ये क्वालिटीज पाई जाती हैं, उनमें भी हैं। जो क्वालिटीज अभी हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे उनके विषय में जो भगवान ने बताई हैं, तो वो अलग अलग योनियों में जितने भी जीव हैं उनके पास है। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावना में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। ये सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जो सारी क्वालिटीज हैं ये वास्तव में जीव के अंदर होनी चाहिए, लेकिन वो विकसित कैसे होती हैं, उत्पन्न कैसे होती हैं, अगर कोई व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करता है। ये श्रील प्रभुपाद जी नहीं कह रहे हैं, भागवतम में आता है कि जो भगवान की भक्ति करते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, उनके अंदर देवताओं के सारे गुण खुद ब खुद प्रकट हो जाते हैं। और जो भगवान की भक्ति नहीं करते, केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही जीवन को समाप्त कर देते हैं, तो उनके अंदर जो योग्यता होती है, जो क्वालिटीज होती हैं, वो सब धीरे 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 समाप्त हो जाती हैं। तो यदि किसी को अपने अंदर क्वालिटीज डिवेलप करनी है, तो उसका एक ही तरीका है कि हम भगवान की भक्ति करें। जैसे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर सकता है। अगर भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो बड़ी कठिनाई से हम अपनी योग्यताओं को विकसित करने का प्रयास करेंगे, परंतु और कोई कार्य न करना, केवल यदि हम भगवान की योजना के अनुसार हम भगवान की सेवा करते हैं तो फिर भगवान क्या करते हैं, अपनी योजना से इन गुणों को खुद ब खुद विकसित कर लेते होते, उसके लिए हमें कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज है उसका मूल कारण कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है कि एवरीथिंग इज बिलोंग्स टू कृष्ण। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारण। जो कुछ भी है उसका कारण कृष्ण है। केवल कृष्ण ही सब कुछ कर सकता है और करता है। हमारे पास जो कुछ है वो कृष्ण का ये ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें यह अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि हमें हमेशा इस बात को अनुभव करना चाहिए, रियलाइज करना चाहिए कि सारी की सारी क्वालिटीज जो हैं वो कृष्ण से ही उत्पन्न हुई हैं। लेकिन फर्क क्या है जानते हैं कि कृष्ण के अंदर ये सारे गुण स्पिरिचुअल हैं। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक में है, वो सारे गुण हैं। हंसना हो, चाहे रोना हो, चाहे गुस्सा हो, चाहे ठगना हो, चाहे कुछ भी हो, वो सब भगवान के अंदर स्पिरिचुअल हैं। लेकिन हम क्योंकि इस भौतिक जगत में हैं, तो इस भौतिक जगत में हमारी आत्मा तो शुद्ध है, वो तो भगवान का हिस्सा है, परंतु हमारी जो ये हमारा शरीर है वो प्रकृति से निर्माण है। तो प्रकृति के कारण, प्रकृति के अंदर हमारा कैद होने के कारण हमारी जो क्वालिटीज हैं वो मटेरियल हो जाती हैं, भौतिक हो जाती हैं, जिसके कारण हम उन आध्यात्मिक विषयों को नहीं समझ सकते जो कि भगवान यहाँ पर हमें बता रहे हैं। क्योंकि भगवान ने कहा पहले कि देखो अर्जुन, मैं जो बताने वाला हूँ या जो मैं हूँ उसे कोई समझ नहीं सकता। न मैं विदु सुरगणा प्रभवम न महेश्वर, मुझे ना तो देवता समझ सकते हैं, महर्षि समझ सकते हैं। तो वो ये प्रश्न कर सकता है कि ठीक है, देवता अक्सर रजोगुणी होते हैं तो भगवान को नहीं समझ पाते, परंतु महर्षि तो सत्वगुणी होते हैं, वो तो भगवान को समझ सकते हैं। लेकिन भगवान गुणों से अतीत हैं। भगवान किसी भी गुण के द्वारा, सत्वगुण के द्वारा हम भगवान को नहीं समझ सकते, ना ही हम किसी और गुण के द्वारा, क्योंकि हम इस भौतिक जगत में आकर गुणों से आच्छादित हो जाते हैं, इसलिए हम भगवान को नहीं समझ सकते। लेकिन भगवान ने कहा श्लोक नंबर 3 में, योमाम अजमनाधिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोहरत और समस्त पापों से मुक्त होता है। यानी कि अगर हमें मोह रहित होना है, अगर हमें अपराधों से मुक्त होना है, तो फिर हमें भगवान को जानना होगा। तो यहाँ यह प्रश्न उठता है कि हम तो गुणों में ही बंधे हुए हैं और भगवान निर्गुण हैं, तो हम इन गुणों में रहकर भगवान को कैसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो 20 क्वालिटीज बताई गई हैं, उनको हम देखते हैं कि ये कौन से गुण में है। पहला है बुद्धि, बुद्धि मोड ऑफ गुडनेस यानी सत्वगुणी। ज्ञान किस में प्राप्त किया जाता है, मूड ऑफ गुडनेस सत्वगुण में। असमोह, असमोह मतलब संशय से रहित सत्वगुणी। सत्य क्षमा सत्वगुण, सत्य सत्वगुण। दमह का मतलब होता है इंद्रियों को कंट्रोल करना, सत्वगुण में संभव है। और क्षमा यानी मन को कंट्रोल करना, ये भी केवल सत्व गुण में ही संभव है। यानी पहली लाइन पूरी, जितने भी गुण हैं, बुद्धि, ज्ञान, असम्मोह, क्षमा, सत्य, सम, दम, क्षमा, ये सात जो है वो सत्व गुण में है। आगे है सुखम, सुख भी सत्व गुण में आता है, परंतु ये कंडीशनल है। जैसे कुछ व्यक्ति शराब पीकर सुख प्राप्त करते हैं तो वो तमोगुणी होता है, कुछ व्यक्ति आहार जो मांसाहार करके सुखी होते हैं तो वो सुख तमोगुणी है, रजोगुणी है, और जो सुख आध्यात्मिक उन्नति में प्राप्त होता है वो सत्वगुणी है। उसके बाद दुख तमोगुणी, भवो का मतलब होता है जन्म, जन्म क्यों होता है जीव का, तमोगुणी, अभाव मतलब मृत्यु, वो भी तमोगुणी है, भय इन भय करना तो वो भी तमोगुणी है, और अभय यानी निर्भीकता, निर्भीकता ये कंडीशनल है। यानी देखो, निर्भीकता अगर ज्ञान प्राप्त करके कि हम आत्मा हैं तो हमें किसी से भी भय करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता। लेकिन यदि भय कोई शराब पी जाता है और उसके कारण अपना मोहित हो जाता है और समझता है कि मैं संसार में किसी से डरता नहीं हूं, तो फिर वो ज्ञान, वो जो अभय है वो तमोगुणी हो जाता है। और अगर कोई लड़ाई करते हैं डाकू इत्यादि, वो बोलते हैं किसी से डरते नहीं है, हम भले पुलिस आ जाए ही आ जाए, तो वो रजोगुणी है। तो ये जो है वो कंडीशनल है अभय। और आगे भगवान बताते हैं अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस, किसी के ऊपर हिंसा ना करना, वो सत्वगुणी है। समता मनी के सबको इक्वल समझना, ये केवल सत्वगुण में ही संभव है। और तुष्टि मन संतुष्ट, संतुष्टि जो है वो भी कंडीशनल है, कि जैसे अगर आपको ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मेरे पास जो कुछ है वही मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि भगवान ने मुझे यही दिया है तो मुझे इसी से आनंदित रहना है, संतुष्ट रहना है, तो ये सत्वगुणी संतुष्टि है। अगर कोई भौतिक वस्तु को प्राप्त करता है, जैसे मुझे ये वस्तु प्राप्त हो जाए, तो उस टाइम पर जब वो चीज प्राप्त हो जाती है तो उससे संतुष्टि फील होती है, वास्तव में वो संतुष्टि नहीं होती है, कुछ समय के बाद वापस से उसे इच्छा उत्पन्न होती है, लेकिन उस समय संतुष्टि फील होती है वो रजोगुणी है। और जैसे कुछ लोग होते हैं ड्रग्स लेते हैं या फिर शराब पीते हैं, उस टाइम पर उनको जो संतुष्टि मिलती है वो तमोगुणी है। उसके बाद तप, तपस्या भी कंडीशनली है, क्योंकि जो तपस्या हम शरीर को दुख देने के लिए करते हैं या फिर किसी और को तकलीफ करने के लिए करते हैं वो रजोगुणी है, सॉरी तमोगुणी है। जो तपस्या से हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं वो रजोगुणी है, और जो तपस्या आज हम कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो सत्वगुणी है। दान भी उसी तरह कंडीशनल है, और यश भी कंडीशनल है, और अपयश जो है, आगे श्री भगवान श्री कृष्ण इनके विषय में बताएंगे चैप्टर नंबर 17 में, कि जो दान हम सिर्फ दिखाने के लिए देते हैं वो रजोगुणी होता है, जो बगैर किसी जानकारी के गलत लोग को देते हैं वो तमोगुणी होता है, और जो ज्ञान के साथ सही व्यक्ति को और सही समय में शुद्धता के साथ दिया जाता है वो सत्वगुणी होता है। यश में भी ऐसा ही है कि अगर किसी को यश इस भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने का यश होता है, रजोगुणी है, और जो बेवकूफ होता है उसको ठगाने के लिए यश दिया जाता है तो तमोगुणी है। और यदि कोई कृष्ण भक्त का यश होता है, वास्तव में कीर्ति मध्य सबसे ज्यादा कीर्ति बड़ी कौन सी है, रामानंद राय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सारी कीर्तियों में सबसे महान कीर्ति क्या है, यश क्या है, तो बोला जो कृष्ण की भक्ति करते हैं ना, उस भक्ति करने से जो यश प्राप्त होता है वो सबसे बड़ा है। और अपयश भी कंडीशनल है। वो कैसे कि देखो, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, उससे अगर हमारी कोई निंदा करता है, अपयश होता है, तो वो सत्वगुणी अपयश होता है। कुछ लोग भक्तों की निंदा करते हैं, और इसी तरह से कुछ लोग तमोगुणी कार्य करते हैं तो उनकी निंदा हो रही होती है तो तमोगुणी, और अगर रजोगुणी कार्य करके उनके बीच उनका यदि कोई अपयश करता है तो वो रजोगुणी। और आगे भगवान कहते हैं भवंती भावा बोता नाम मत एव पृथक विधान, कि जो सारी क्वालिटीज हैं वो सब मुझसे उत्पन्न हुई है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि ये सारी क्वालिटीज जो है वो गुणों में है, या तो सत्वगुण में, या तो रजोगुण में, या तो तमोगुण में है। तो हमें कृष्ण की भक्ति करने के लिए गुणों की आवश्यकता होती है, क्वालिटीज की, जैसे बुद्धि, ज्ञान, असमोह। तो इन सारे गुणों को, इन सारी क्वालिटीज को हम कैसे शुद्ध सत्वों में चेंज कर लें, क्योंकि जब तक हम शुद्ध सत्वों में इन गुणों को, इन क्वालिटीज को चेंज नहीं कर देते, तब तक क्या होगा, हम कृष्ण को नहीं समझ सकते। तो कैसे इन सारी क्वालिटीज को हम शुद्ध सत्वों में एक्सचेंज करते हैं, जब हम इन सब को कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो ये आध्यात्मिक हो जाते हैं। क्योंकि अभी तो हम भौतिक प्रकृति के अंदर है ना, तो जिसके कारण हमारे पास जो भौतिक गुण हैं, बहुत जितनी भी क्वालिटीज हैं, वो भी मटेरियल हैं, और इन मटेरियल क्वालिटीज के कारण हम कृष्ण को समझ नहीं सकते। और अगर हम कृष्ण को समझेंगे नहीं तो क्या होगा, हम ना पापों से, सर्व पाप है प्रमुच्यते, पापों से भी मुक्त नहीं होंगे और परफेक्शन ऑफ द लाइफ भी प्राप्त नहीं करेंगे। तो इन सारी क्वालिटीज को हमें समझना है और इन सारी क्वालिटीज को कृष्ण की सेवा में लगाना है, तभी आध्यात्मिक हो जाएंगे। तो एक एक करके हम इसको समझेंगे कल से। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिए, क्षमा चाहती हूँ, मैं सही वॉइस में बात नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए आपको इतना कष्ट हुआ होगा ये ऑडियो सुन के। आप प्रार्थना कीजिएगा कि मेरी वॉइस सही हो जाए, ताकि मैं अच्छे से आप सबको श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करा सकूँ। हरे कृष्ण।